पिछले कुछ रविवारों से दक्ष के यज्ञ की कथा पर चर्चा हो रही है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद से ये कथा है। तो श्रीमद् भागवत की इस कथा को अब तक हम इतना कह चुके हैं कि दक्ष ने अपमान किया शिव जी का एक यज्ञ में, जहां वो आए शिव जी उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष को अहंकार था, द्वेष था, और द्वेष के कारण उसने अपमान किया शिव जी का, और फिर वहां से चले गए। शिव जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, बहुत सुंदर संदेश हम सबको दिया कि वैष्णव वो है जो अपने मान सम्मान से विचलित नहीं होता, न मान से न सम्मान से। जब शिव जी को मान मिलता है, अपमान मिलता है, कुछ भी मिलता है, शिव जी विचलित नहीं होते। जब कोई उन्हें बहुत सारा मान सम्मान देते हैं तो भी शिव जी विचलित नहीं होते। दक्ष ने अपमान कर दिया तो भी शिव जी विचलित नहीं हुए। तो ये वैष्णव का गुण है, इसे धीर कहते हैं। भगवद गीता में भगवान वर्णन करते हैं, धीर पुरुष वो है जो विचलित नहीं होता। धीरस्तत्र न मोहयति, मोहयति अर्थात जो मोह में नहीं पड़ता। कौन से मोह में? अपने आप को शरीर मानते हुए, शरीर के ऊपर हुए आरोपों पर, शरीर को दिए गए मान सम्मान से जो विचलित नहीं होता, वो धीर पुरुष है। और जो इन सबको समान मानता है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, चाहे उसके लिए मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, वो एक ही तरह रहता है। तो शिव जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, उठकर चले गए। फिर एक दूसरा यज्ञ हुआ जो दक्ष ने किया, बुलाया नहीं शिव जी को। सती वहां पर गई शिव जी के मना करने पर, और फिर सती का अपमान हुआ। और हम लोग चर्चा ये कर रहे थे पिछले दो रविवारों से, तीन रविवारों से प्राय, कि सती देवी ने अपने देह को छोड़ते हुए बहुत सुंदर उपदेश हम सबके लिए दिए। सती देवी ने, आप सबको याद होगा कि जब सती देवी अपना देह छोड़ रही थी तो उसके पहले उन्होंने भगवे वस्त्र धारण किए। भगवे वस्त्र ये वैराग्य का सूचक है। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति मरना चाहते हैं वो भगवे वस्त्र धारण करते हैं मरने से पहले, और इसीलिए वैराग्यों को भगवे वस्त्र धारण करने होते हैं, अर्थात समाज की दृष्टि से वो मृत्यु को स्वीकार करते हैं। सामाजिक मृत्यु, समाज के लिए, परिवार के लिए वो मृत के समान है। अब उनका जीवन केवल कृष्ण के लिए है। सही दृष्टि में भगवे वस्त्र का एक ही उद्देश्य है, और वो है कृष्ण के लिए जीना, और अन्य सबों के लिए वो व्यक्ति मृत हो जाता है। तो सती देवी ने भगवे वस्त्र धारण किए, और फिर अग्नि में प्रवेश करने से पहले उन्होंने ये उपदेश हम सबके लिए दिए। वैसे तो भागवत में वो केवल दक्ष को संबोधित कर रही हैं, लेकिन उस संबोधन के द्वारा बहुत सुंदर उपदेश वो दे रही हैं। अब तक हम लोग 6 शिक्षाओं की चर्चा कर चुके हैं जो उन्होंने दी, और आशा है कि आप सबको वो 6 शिक्षाएं याद होंगी, क्योंकि आप सब पिछले 2-3 रविवारों से आकर इसको सुन रहे हैं। तो इससे पहले कि 7वीं शिक्षा प्रारंभ करें, उन 6 शिक्षाओं को पुनः दोहराएंगे, ताकि उनको हम अपने जीवन में उतार कर भक्ति में प्रगति कर सकें। पहली शिक्षा थी सती देवी की, हाँ, सभी जीवों को समान रूप से देखना और किसी में दोष नहीं देखना, बहुत अच्छा। दूसरा, ईर्ष्या नहीं करना, तीसरा बाहरी रूप से, यस बहुत अच्छा, किसी को बाहरी रूप से नहीं देखना, कैसा शरीर है, कैसे रहते हैं, जैसे दक्ष ने कहा ना कि ये तो शमशान में रहता है, राख लगाकर घूमता है, तो बाहरी दृष्टि से नहीं देखना। और ये पांचवा है, एक और रह गया, ठीक है चलिए, वैष्णव अपराध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, हो चुका है शायद ईर्ष्या, और कोई, हाँ जी, वो तो वैष्णव अपराधों में आता है। पिछली बार अपराधों की चर्चा करते हुए हमने चार प्रकार के अपराध बताए थे जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, किसी को याद है वो चार प्रकार के कौन से अपराध हम लोग करते हैं? यस, हाँ, नाम अपराध, सेवा अपराध और वैष्णव अपराध, इतना इतना विस्तार से चर्चा हुई थी, और हाँ निंदा नहीं, वो वैष्णव अपराध में आता है, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, और एक कौन सा था? हाँ, अच्छा है ना, ऐसे परीक्षा होती रहनी चाहिए हम सबकी, याद आएगा। चौथा कौन सा था? किसी भी जीव पर क्रूरता नहीं करना, ये भी अपराध की श्रेणी में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। तो इन अपराधों की चर्चा, तो वैष्णव अपराध नहीं करना, और ये पांचवा था या चौथा, कितने हो गए? चार हुए, पांच हुए, चार पांच, कंफ्यूजन, एक काम करते फिर से शुरू करते हैं। पहला सब जीवों को समान देखना, दूसरा ईर्ष्या नहीं करना, तीसरा दोष नहीं देखना, ये तो पहले में था, बाहरी रूप से, हाँ बाहरी रूप से किसी के शरीर, किसी की स्थिति को देखकर, तो फिर क्या देखना चाहिए? अगर बाहरी नहीं देखना है तो क्या देखना चाहिए? हाँ गुणों को देखना चाहिए। और कितने हुए अभी, याद रखिए नहीं तो फिर से गिनना पड़ेगा, तीन हुए। दोष नहीं ढूंढना है किसी ने कहा था ना, लेकिन दोष नहीं ढूंढना, लेकिन क्या करना? हाँ हाँ, अगर एक भी गुण हो तो उसको बहुत बड़ा कर देना चाहिए, ये साधु का गुण है, बहुत अच्छा। चार और पांचवा अपराध नहीं करना, वैष्णव अपराध नहीं करना, बहुत अच्छा। छठा, छठी शिक्षा उन्होंने दी थी, याद है आपको? निंदा का हो गया, निंदा नहीं, जगन्नाथ जी को याद नहीं है, कैसे होगा बताइए, हाँ? ये जगन्नाथ हैं और भूल गए हैं, ये जगन्नाथ दास हैं, जगन्नाथ नहीं है। छठा है जो शिक्षा उन्होंने दी कि हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए और कभी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने नियत कर्म करते रहने चाहिए, दूसरे के कर्मों की, दूसरे की क्रियाओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये छठा हमने चर्चा की थी, उदाहरण हमने दिया था नियत कर्म क्या होता है। नियत कर्म वो होता है जो अलग अलग वर्ण के लिए, अलग अलग आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित है, अपने मन से बनाया हुआ कर्म नियत कर्म नहीं होता। जैसे हमने उदाहरण दिया था एक चोर का, वो चोरी करता है, हत्यारा हत्या करता है, तो ये उसका नियत कर्म नहीं कहलाता है, इससे वो भगवान की सेवा नहीं करता है। नियत कर्म का उद्देश्य है, नियत कर्म किसे कहते हैं? सबसे पहली स्थिति शास्त्रों में वर्णित, अपने अपने स्थिति के अनुसार भगवान की सेवा के लिए या भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य नियत कर्म कहलाता है। तो वो सही नियत कर्म है, क्योंकि नियत कर्मों का उद्देश्य है भक्ति में आगे बढ़ना। भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु की संतुष्टि, ये वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है या नियत कर्मों का उद्देश्य है। तो नियत कर्म ये कब तक करने चाहिए और कब त्यागने चाहिए, शास्त्रों में दोनों वर्णन है। नियत कर्म हमें करने, नियत कर्म मतलब हमारे जो कर्तव्य हैं, तो क्या कभी कर्तव्यों को त्याग भी सकते हैं? शास्त्र क्या ये भी कहता है कि हम कर्तव्यों को त्याग सकते हैं? अर्जुन कर्तव्यों को त्यागना चाहता था, भगवान ने मना किया। अर्जुन सोच रहा था मैं क्षत्रिय हूं लेकिन मैं भीख मांगूंगा जाकर, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा नियत कर्म है, तुम्हें करना है। तो जब अर्जुन को मना किया तो क्या हम में से कोई नियत कर्म त्याग सकते हैं? शास्त्र कहता है नियत कर्मों को त्यागा जा सकता है, लेकिन केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। अगर कोई भगवान की सेवा करने के लिए अपने बाकी सारे कर्तव्यों को, बाकी सारे धर्मों को त्याग देता है, धर्म अर्थात बहुत सारे धर्म होते हैं, समाज के प्रति धर्म, ऋषि मुनियों के प्रति धर्म, परिवार के प्रति धर्म, देवताओं के प्रति धर्म, ये सारे धर्म हैं, कर्तव्य हैं। और इतना ही नहीं, शास्त्रों में इन्हें ऋण कहा गया है। ऋण यानी हमारे ऊपर कर्ज है। हाँ, कर्ज, ऐसे ऋण अच्छा शब्द लगता है, तो कर्ज जो भी आप समझ लें, तो इसको कर्ज कहा गया है। देव ऋषि भूतात् नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन, कि ये सब देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, अन्य जीवों के प्रति, समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है, हम ऋणी हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारे ऊपर कर्जा है इनका। क्यों कर्जा है? ऋषियों का कर्जा है क्योंकि वो ज्ञान देते हैं। जो ज्ञान हमें दिया है, हमने ज्ञान लिया तो उनको क्या दिया? ऋषियों को हमने। देवताओं से हम धूप लेते हैं, बारिश लेते हैं, अन्य चीजें लेते हैं, हम उनको क्या देते हैं? तो इसीलिए कर्जा है हमारे ऊपर, ऋण है हमारे ऊपर, पितरों का ऋण है, अर्थात जिनकी परंपरा में, जिस परिवार में हम आते हैं उस परिवार का ऋण है, माता पिता का ऋण है। तो कैसे कोई व्यक्ति इस ऋण को चुका सकता है? देवताओं के लिए क्या कर सकते हैं? हम यज्ञ करते हैं तो देवताओं के ऋण चुक जाते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं तो ऋषि मुनियों के ऋण चुक जाते हैं। लेकिन सारे ऋण चुकाना बड़ा कठिन है। माता पिता का ऋण कौन चुका सकता है? समाज के अन्य जीवों का ऋण कौन चुका सकता है? इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि ये सारे ऋण हैं, देव ऋषि भूतात् नृणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन। ऐसा व्यक्ति न वो दास रहता है न ऋणी रह जाता है। न किं करो नायम ऋणी च राजन, कौन? जो भगवान श्री मुकुंद, जो मुक्ति प्रदाता मुकुंद हैं, उनकी शरण में चला जाता है। गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, जो व्यक्ति मुकुंद भगवान की शरण में, कृष्ण की शरण में चला जाता है, उसके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता, कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। तो अपने नियत कर्म केवल एक स्थिति में त्यागे जा सकते हैं, जब हम भगवान के, भगवान को समर्पण करें, अन्यथा नियत कर्मों को करना चाहिए। तो इसको सती देवी बताने लगी और फिर अगली शिक्षा वो देती हैं। छह शिक्षाएं हो गईं, क्योंकि प्रश्न आया कि नियत कर्म करने चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के मन में आए कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नियत कर्म हैं। जो घर परिवार में हैं उनके लिए नियत कर्म है परिवार को संभालना, परिवार को देखना, और जो नहीं है उनके लिए कोई नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, घर परिवार की नहीं। तो उसको समझाने के लिए वो अगली चीज कहती हैं। सती देवी कहती हैं, शास्त्रों में दो मार्ग दिए गए हैं, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जहाँ व्यक्ति सब कुछ करते हुए सारे भोगों को लेते हुए भगवान की ओर बढ़ता है, और निवृत्ति मार्ग जहाँ सब कुछ छोड़कर वो भगवान की ओर बढ़ता है। साधारण शब्दों में कहें तो एक गृहस्थ जीवन और दूसरा ब्रह्मचारी और सन्यास जीवन। तो एक भोग का जीवन, भोग करते हुए भी भगवान की ओर बढ़ना, और एक विरक्ति का जीवन, वैराग्य का जीवन, एक आसक्ति का जीवन, एक विरक्ति का जीवन। इसको कहते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। उन्होंने कहा दोनों सही हैं, कोई गलती नहीं है, व्यक्ति दोनों में लगकर अपने अपने कर्तव्य करता है। लेकिन वो समझाती हैं कि जो प्रवृत्ति मार्ग में आप जैसे लोग, दक्ष को कहने लगी, आप जैसे लोग जो कर्म कांड करके यज्ञ इत्यादि करके कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ भोग करना चाहते हैं, इस जगत में ज्यादातर लोग यज्ञ इत्यादि केवल कुछ पाने के लिए करते हैं, है ना? आपके जीवन में कोई कष्ट है, आप किसी के पास जाते हैं, व्यक्ति कहता है ये यज्ञ कराओ सब कुछ दूर हो जाएगा, मृत्युंजय यज्ञ कराओ मृत्यु नहीं आएगी, ऐसा होता है। ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। तो ये यज्ञ दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये शास्त्र के अनुसार है, लेकिन यज्ञों का उद्देश्य कुछ भोग नहीं है। तो सती कहने लगी कि आप जैसे लोग जो यज्ञों के द्वारा केवल ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, आपका ऐश्वर्य दिखता है, लेकिन जो निवृत्ति मार्ग पर हैं, अर्थात शिवजी, जो वैरागी हैं, विरक्त हैं, उनका ऐश्वर्य दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास ऐश्वर्य नहीं है, वे केवल इच्छा मात्र से ऐश्वर्य प्रकट कर सकते हैं, आपको तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो सती देवी ये शिक्षाएं दे रही हैं कि आसक्त और विरक्त जीवन में, हो सकता है विरक्त जीवन में दिखता हो कि इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसका वैराग्य पूर्ण है, भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तो उसके पास सारे ऐश्वर्य हैं। दिखने में वो जैसे शिव जी जंगल में रहते, पेड़ के नीचे बैठते हैं, उनका कोई घर नहीं है, वैसे पेड़ भी बहुत बड़ा है। कैलाश में वर्णन किया गया है कि जिस वट वृक्ष के नीचे शिवजी बैठते हैं वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वो इतना ऊंचा है, ऐसा वर्णन किया गया है भागवत में कि वो 800 मील ऊंचा है। 800 मील यहां से कहां तक पहुंच जाएंगे, शायद दिल्ली पहुंच जाएंगे। 800 मील ऊंचा है और 600 मील चौड़ा है, उसकी शाखाएं 600 मील तक फैली हुई है। उस वृक्ष के नीचे बैठते हैं शिव जी कोई साधारण वट वृक्ष नहीं है वो। तो खैर, फिर भी बाहरी दृष्टि से कुछ है नहीं उनके पास, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है, उनको आवश्यकता नहीं है उसका प्रदर्शन करने की, लेकिन इच्छा मात्र से वो प्रकट हो जाता। अर्थात सती देवी कह रही हैं कि वैराग्य बाहरी दृष्टि से हो सकता है कि कुछ ना देता हो, लेकिन वो सबसे बड़ा धन प्रदान करता है। कौन सा धन सबसे बड़ा है आप बताइए, कौन सा धन सबसे बड़ा है? रुपया बड़ा है, डॉलर बड़ा है? संतोष, बहुत अच्छा। और उससे बड़ा धन? हाँ, भक्ति। संतोष या समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस जगत में व्यक्ति को कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। आपके पास कितना ही धन आ जाए, कितनी ही मान प्रतिष्ठा आ जाए, कितनी ही बार आप प्रधानमंत्री बन जाए, संतुष्टि नहीं है। एक बार निकल गए फिर से प्रयास करते हैं। तो ये इस जगत का लक्षण है, इस जगत में आपको संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। कोई ऐसी वस्तु इस जगत की नहीं है जो संतुष्टि प्रदान करे। व्यक्ति सोचता है धन से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, धन आ गया तो बस जीवन सफल नहीं होता। व्यक्ति सोचता है मान प्रतिष्ठा आ गई, पद आ गया, बस जीवन सफल नहीं होता। व्यक्ति सोचता है बस परिवार में सुखी सुख रहे, मैं संतुष्ट रहूंगा। कभी कभी लोग करते हैं ना, जब पढ़ाई कर रहा होता है लड़का तो वो सोचता है कि बस मुझे डिग्री मिल जाए, जीवन सफल। कुछ नहीं होता। उसके बाद बस मुझे काम मिल जाए बड़ी कंपनी में, जीवन सफल। काम मिल जाता है फिर संतुष्टि नहीं। फिर सोचता है कि अब प्रमोशन मिल जाए, फिर सोचता है कि बहुत अच्छी युवती मिल जाए, विवाह हो जाए, वो भी हो जाता है, फिर भी संतुष्ट नहीं। फिर सोचता है बच्चे हो जाएं अच्छे सुंदर सुंदर, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, हम भी संतुष्ट, कोई संतुष्ट नहीं होता। फिर सोचता है बस बच्चों का विवाह हो जाए, जीवन सफल है। बच्चों का विवाह हो जाता फिर भी संतुष्ट नहीं है व्यक्ति। फिर सोचता है बस इनके बच्चे हो जाए। देखिए व्यक्ति की असंतुष्टि कहां तक जा रही है। शुरू हुई थी कॉलेज की डिग्री से कि बस वो मिल जाए, पहुंच गई बच्चों के बच्चों तक। असंतुष्ट व्यक्ति, कहीं संतुष्टि नहीं। उस दिन हम बता रहे थे ना कि व्यक्ति कहीं पर संतुष्ट नहीं है। छोटे छोटे गांव के लोग कारोबार आना चाहते हैं, आसपास के लोग, है ना, कि कारोबार में जाएंगे थोड़ा कुछ, वहां बड़ा शहर है। कारोबार वाले बंबई जाना चाहते हैं, बंबई बड़ा शहर है, वहां जाएंगे। या गोवा जाना चाहते हैं, गोवा वाले बंबई जाना चाहते हैं, बंबई वाले अमेरिका जाना चाहते हैं, उनको लगता है अमेरिका बड़ा, और अमेरिका वाले चांद पे जाना चाहते हैं। कोई कहीं संतुष्ट नहीं। तो इसीलिए ये चीजें हमें जानना चाहिए कि संतुष्टि आती कहां से है, क्यों हम संतुष्ट नहीं है जीवन में। धन नहीं संतुष्टि दे रहा, मान सम्मान नहीं दे रही, जॉब नहीं दे रही, परिवार नहीं दे रहा, संतुष्टि क्यों नहीं है। क्योंकि संतुष्टि आत्मा के लिए चाहिए, शरीर के लिए नहीं। ये धन, ये मान सम्मान, ये शरीर के लिए है, आत्मा को इससे क्या लेना देना। और आत्मा की संतुष्टि होती है जब वो भगवान की भक्ति करते हैं। इसीलिए जीवन में भक्ति आवश्यक है, उसके बिना सब कुछ जीरो है। प्रभुपाद समझाया करते थे कि अगर आप एक जीरो लिखें, फिर और दूसरा, फिर और तीसरा, ऐसे 100 जीरो लिख दें तो उनका मूल्य कितना होगा, जीरो। लेकिन उन सारे जीरो के आगे एक लगा दें बस, उसके पहले, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा। अचानक जिसका जीरो था उसका करोड़ों करोड़ों रुपया मूल्य हो जाता है। यही प्रभुपाद समझाते थे कि हमारे जीवन में धन एक जीरो, मान प्रतिष्ठा दूसरा जीरो, या फिर कोई सम्मान मिलना तीसरा जीरो, अच्छा परिवार चौथा जीरो, अच्छा स्वास्थ्य पांचवा जीरो। लेकिन इस जीरो की वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, कुछ नहीं, जब तक एक श्री कृष्ण सबसे पहले नहीं लगते। तो प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण को अपने जीवन में लाएंगे तो सारी चीजों का मूल्य हो जाता है। फिर हमारा धन भी मूल्यवान है, फिर हमारा परिवार मूल्यवान है, हमारा समाज मूल्यवान है, अगर वो कृष्ण केंद्रित समाज है। तो इसको सती देवी समझा रही है कि ऐसा नहीं सोचिए कि जो वैरागी हैं उनके पास कोई धन नहीं है। कभी कभी लोग ऐसा सोच लेते हैं। वर्णाश्रम पद्धति में एक नियम बनाए गए हैं कि गृहस्थ जीवन में जो हैं उनको बाकी तीनों आश्रम चलाने होते हैं। तो गृहस्थ जीवन में वो लोग व्यापार करते हैं, कमाई करते हैं, और क्योंकि व्यापार करते हुए, कमाई करते हुए बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो पापमय हैं, तो इसलिए अपने उस धन को शुद्ध करने के लिए वे उस धन का उपयोग बाकी तीन आश्रमों को चलाने के लिए करते हैं। और साथ ही साथ अपना कर्तव्य मानते हुए, क्योंकि बाकी तीन आश्रम जैसे ब्रह्मचारी आश्रम, सन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, इनको शास्त्रों में अनुमति नहीं है धन अर्जन करने की, क्योंकि इनका जीवन कृष्ण के लिए है। और जो लोग धन अर्जन कर रहे हैं वो इनके जीवन को चलाते हैं। ये व्यवस्था समाज की आज नहीं सदियों से चली आ रही है, वैदिक सभ्यता है, भगवान ने इसको स्थापित किया है। तो ये पद्धति है, इसीलिए कौन श्रेष्ठ है कौन नहीं इसको कहना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो घर में रहते हैं वो श्रेष्ठ नहीं है और जो जंगल में रहते हैं जिन्होंने वैराग्य लिया है, भगवे वस्त्र धारण किए हैं, वो श्रेष्ठ हैं। नहीं, श्रेष्ठता की बात नहीं है इसमें, ये तो अपने अपने स्थान पर रहकर समाज को आगे बढ़ाना है। तो इस दृष्टि से सती देवी ये समझा रही हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग हैं। व्यक्ति को दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के मार्ग की नहीं, बल्कि अपने मार्ग पर रहते हुए, अपने मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। और फिर अंतिम दो उपदेश सती देवी के, वो कहती हैं, एक उपदेश उन्होंने कहकर कहा और अंतिम उपदेश अपने आचरण से उन्होंने दिया। तो ये शब्दों में या वचनों में ये उनका अंतिम उपदेश है। तो वो कहने लगी कि आपके संग से, कभी जब शिवजी मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं तो मुझे बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि ये जो मेरा शरीर है ये आपसे आया है और आपके संग के कारण, आपसे आने के कारण अब ये दूषित हो गया है, क्योंकि आप एक अपराधी हैं, आपने अपराध किए हैं वैष्णवों के प्रति, शिव जी के प्रति, इसलिए मेरा शरीर अब ये दूषित हो गया और अब मैं इसे त्याग दूंगी। तो ये अंतिम उपदेश वो देती हैं कि हम सब के लिए संग बहुत महत्वपूर्ण है, अगर गलत संग हम करते हैं तो उससे मन और चेतना दूषित हो जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है हम किसका संग करें, कैसे लोगों के साथ रहें, क्योंकि जैसा संग करते हैं उस तरह की भावनाएं हमें सही लगने लगती हैं। आप शराबियों के संग में रहिए, आपको शराब पीना गलत नहीं लगेगा, क्योंकि सभी पी रहे हैं। जैसे आपने वो सुना होगा एक चुटकुला कि एक बार एक व्यक्ति जाकर प्रचार कर रहे थे एक शराबी को, उन्होंने कहा कि भाई तुम शराब मत पिया करो। उसने कहा क्यों, क्या तकलीफ है शराब पीने से, अपने पैसे की पीता हूं। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन तुम नरक में जाओगे शराब पीकर। तो उसने कहा अच्छा, लेकिन मेरा मित्र भी पीता है। तो उसने कहा वो भी नरक में जाएगा। अच्छा, मेरे पिताजी भी पीते हैं, वो भी नरक में जाएंगे। तो थोड़ी देर सोचकर उसने बोला तो फिर तकलीफ क्या, हम तीनों वहां बैठकर शराब पियेंगे, तो कोई तकलीफ नहीं, तीनों नरक में जा सकते हैं। तो ये संग का असर है कि आप जब सारे शराबी साथ में, पिता भी पी रहे हैं, मित्र भी पी रहा है, तो उन्हें लगता है यही जीवन है। और आप देखिए आज से 50 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व जिन चीजों को बड़ा घृणित माना जाता था, जो घरों में नहीं की जाती थी, जिनको करते हुए लोग छुपते थे, शर्माते थे, डरते थे, आज उसको जीवन का अंग मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का संग हुआ, हमारी सभ्यता पर आक्रमण हुआ ऐसे लोगों का, फिर वो चाहे मुगल हो या फिर अंग्रेज हो। तो ऐसे लोगों के संग से अब ऐसा लगने लगा कि ये सारी चीजें तो स्वाभाविक हैं, ये जीवन का हिस्सा है, इसे होना ही चाहिए। बहुत सारी चीजें जो वैदिक सभ्यता में मना हैं, आज घर घर में हो रही हैं। हम अपनी सभ्यता को भूल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संग ऐसा है। हम सबसे बड़ा हमें संग देने वाला हमारे घर में बैठा है असुर। कौन है? टीवी। बहुत अच्छा, आप लोग बड़े विद्वान और बड़े दक्ष लोग हैं, दक्ष की कथा हो रही है। टीवी इतना संग देता है, इतना संग दे, 24 घंटे तैयार है संग देने के लिए। और कैसा संग? जैसा चाहिए आपको, जो चाहिए आप कर लीजिए। 200 चैनल चल रहे हैं टीवी में, और सब क्या दिखा रहे हैं। कहीं ऐसे ऐसे ये कहा जाता है कि जीवन का उद्देश्य भूल रहे हो आप टीवी देखकर। कोई नहीं, कोई चैनल में ये नहीं कहते, उल्टा और कल फिर देखिए, अभी उसके बाद फिर देखिए, फिर ये होगा, फिर वो होगा। और देखिए, हम सबकी मूर्खता तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप सब विद्वान लोग हैं, लेकिन हम सबका भ्रम देखिए, मोह देखिए। हम जानते हैं कि वो जो टीवी में चल रहा है ये एक धोखा है, ड्रामा है, सच नहीं है, सही है ना? आप सब जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है, गोली मार दी, वो मर गया, आप लोग कितना अच्छा व्यक्ति था बेचारा, अरे वो व्यक्ति घर पे बैठा शराब पी रहा है, वो मरा नहीं है। ये आप भी जानते हैं, है ना? लेकिन हमें बड़ा अच्छा, हम फिल्म देखने जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। अब ये क्या, आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, फिल्म में क्या होता है, घुसते ही जब फिल्म शुरू होती सबसे पहले क्या किया जाता है, अंधकार, सीधा पूरा थिएटर में अंधेरा अंधेरा हो जाता है ना, आपको अपने चलने के लिए जगह भी नहीं दिखती, वो टॉर्च लेकर दिखाते हैं। आप बोलेंगे आपको कैसे मालूम, पहले गए थे हम, बहुत पहले, अभी नहीं जाते, कई साल हो, तो वो टॉर्च लेकर दिखाते हैं, जगह नहीं, चल इतना अंधेरा कर देते हैं कि आपको अपना पांव नहीं दिखाई देता, हाथ नहीं दिखाई देता, और फिर एक जगह पर लाइट आती है और उसमें सब चल रहा है। जैसे ही अंधकार होता है उसमें चलता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, कोई मार रहा है, कोई भाग रहा है, अरे क्या होगा, ये इसकी शादी होनी है, होगी या नहीं होगी, पिताजी बीच में आ गए या पता नहीं क्या क्या, इस सब मन में होता है, क्या होगा क्या होगा, अरे वो ट्रेन पकड़ रहे, हाथ पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे, बहुत सारा कुछ होता है। जैसे ही लाइट आती है आपको क्या दिखता है, सामने दीवार, फिर अंधकार करते हैं, फिर वही आप उसमें, अरे अरे किसी को चाकू मार देते हैं, आपकी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू गिरने लगते हैं, कितना अच्छा व्यक्ति था, देखो समाज ऐसा ही है सब। तो ये क्यों होता है, अज्ञान। वो हमें अगर वही चीज पूरे रोशनी में दिखाई जाए हम आनंद नहीं लेंगे, अंधकार में आनंद है, अज्ञान में आनंद है। जब तक हम अज्ञान में रहते हैं हम ये मोह की चीजों को सत्य मानते हैं, जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है हमें पता चलता है ये सब बेकार है। तो इसलिए ये जो टीवी है जो हमारे घर में बैठा, घर घर में आजकल तो दो दो तीन तीन होते हैं, लोगों को एक असुर से पूरी संतुष्टि नहीं है, दो दो तीन तीन, एक बड़े कमरे में, एक बेडरूम में, बच्चा कुछ और देख रहा है, माताजी कुछ और देख रही हैं, पिताजी कुछ और देख रहे हैं, पिताजी के पिताजी क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, सब अपने अपने में। और क्या प्रभाव पड़ रहा है, कुछ साल पहले एक सर्वे किया गया था बच्चों के ऊपर कि क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों का टीवी पर, तो बताया गया कि जब तक बच्चा 10वीं कक्षा पास करता है 10,000 हत्याएं देख चुका होता है टीवी पर, 10,000 हत्याएं, 20,000 हिंसा की घटना देख चुका होता ऑलरेडी, और भी ज्यादा, और पता नहीं क्या क्या, चोरी, डकैती, बलात्कार सब देख चुका है, ये सब उसके मन पर है। और वो क्या देखता है, हीरो बनना मतलब क्या है, बंदूक निकालो चलाओ हीरो, इसीलिए आजकल वो खिलौने भी बंदूक के आते हैं, बच्चों को बंदूक देते खेलने के लिए, क्योंकि वो टीवी में देखते हैं। तो इस तरह का ये प्रभाव पड़कर जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, उसको गोली मारने में कोई दुख नहीं होता, किसी को हत्या करने में, किसी को धोखा देने में दुख नहीं होता, संस्कारों का नाश हो रहा है इस टीवी के द्वारा। कौन से अच्छे संस्कार, संस्कार चैनल पर भी संस्कार नहीं दिखाए जाते, कौन से अच्छे संस्कार दिखा रहे हैं बताइए, सारे सीरियल्स में क्या है, हमें लोगों ने बताया, हमने देखे नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं सारे सीरियल्स में क्या है कि किसके घर में झगड़ा हो रहा है, किसकी बहू सुखी नहीं है, और किसकी लड़की किसके साथ चली गई, और बस यही सब है। तो ये सब देख देख कर हमारे मन में क्या प्रभाव पड़ता है कि जब वो शाहरुख खान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, बस इतना गलत प्रभाव हमारे मन पर हो रहा है। तो इसीलिए संग बहुत आवश्यक है। और इसीलिए जब रविवार को मंदिर में आना हो तो इच्छा नहीं होती, कैसे इतने बढ़िया असुर को छोड़कर हम जा सकते हैं। शायद रविवार को और कार्यक्रम आते होंगे, हमें पता नहीं। पहले तो ऐसा होता था, हम लोग जब छोटे थे तो हफ्ते में एक पिक्चर आती थी, एक बार गाने आते थे, चित्रहार या पता नहीं क्या, और ऐसे ही कुछ बस। और एक ही चैनल था दूरदर्शन, सारे मोहल्ले के लोगों के पास एक ही टीवी होता था, वो सारे मोहल्ले के लोग आकर एक ही जगह बैठकर टीवी देखा था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट था तब। और आज तो 200 चैनल हैं, आपको जो जितना बिगड़ना है बिगड़ लीजिए। सच है कि नहीं बताइए, है ना? हम कुछ गलत कह रहे हो? आप यहाँ पे कोई कुछ टीवी के आराधक बैठे हो, आराधना करने वाले, तो उनसे क्षमा चाहते हैं जो रोज टीवी के सामने आरती लेके ओम टीवी आए नमः इत्यादि करते हो, तो उनसे क्षमा चाहते हैं। तो इसलिए संग बहुत आवश्यक है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम इसी तरह चलते रहे, यही संग रहा, इन्हीं में पड़े रहे, तो जीवन के अंत में क्या होगा? किसको पुकारेंगे आप टीवी देख देख कर जीवन के अंत में, बताइए? जो जीवन भर आप देखेंगे, जो जीवन भर कहेंगे, जिसका अभ्यास जीवन भर करेंगे, वही चीज मुख पर आएगी जीवन के अंत में। बस यही होगा। शायद जीवन के अंत में आप पूछेंगे, जाने के पहले बता दो वो सीरियल में वो मरा कि नहीं मरा, जो भी है, अरे तुम मर रहे हो तुम उसकी चिंता क्यों करो? इसीलिए जो अभ्यास जीवन भर जरूरी है, और किस चीज का अभ्यास? भक्ति का अभ्यास। अभ्यास कीजिए कृष्ण का नाम लेने का, ताकि मृत्यु के समय भी ये नाम मुख पर आए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक गायक ने गाया है भजन, एक श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि मृत्यु के समय आप आना, और उस समय बहुत वो क्या ना भजन भूल गए, वो एक भजन था कि मृत्यु के समय आना, क्या है वो भजन, राधा को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, आपने सुना होगा ये, तो जब प्राण तन से निकले तब आप आना। केवल ऐसे आने वाले नहीं है कृष्ण बोलने से। एक कथा सुनाते हैं आपको। एक बार एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा कि वो मर गया, स्वप्न में देख रहा है कि वो मर गया और उसको जलाया जा रहा है शमशान में, और वो बाहर खड़ा होकर देख रहा है अपने आप को जलता हुआ। वो देख सकते हैं, हम लोग भी देख सकते हैं। आप लोग देखना चाहते हैं अपने आप को जलते हुए? मृत्यु के बाद सब लोग देखेंगे, क्योंकि आत्मा चली जाती है, फिर ऐसे खड़े होकर देखती है, अच्छा अच्छा वो शरीर जला रहे, अरे वो पांव जला नहीं ठीक से, जरा उसको बोलो, वो सब ऊपर से हम लोग देखने वाले। तो व्यक्ति देख रहा है कि उसका शरीर जल रहा है, और उसने देखा कि लोग हैं, कोई बहुत दुखी है, कोई प्रसन्न भी है, यू नो ऐसा होता है जब व्यक्ति मरता है तो शमशान में सब तरह के लोग होते हैं, किसी को बड़ा आनंद भी आता है अच्छा हुआ, और कोई बहुत दुखी होता है, रोता है क्यों मेरा पैसा लेके चला गया इसलिए दुख होता है, और कोई दुख नहीं है कि पैसा देना था लोन लिया था क्या होगा। तो उसने देखा कि कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ प्रसन्न हैं, और ऐसे ही सब अलग अलग भावों में। और अचानक उसके पीछे किसी ने ऐसे हाथ मारा, उसने घूम के देखा भगवान खड़े हैं, ये स्वप्न में हो रहा, तो एकदम ऐसा हैरान हो गया, भगवान कैसे आ गए? तो भगवान ने उनसे कहा कि हर रोज जीवन में तुम हर रोज 10 मिनट मुझे देते थे, मैं अब उसका कर्जा चुकाने आया हूं, तुम्हें लेने के लिए आया हूं। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि कितनी बड़ी मूर्खता मैंने की, जिन लोगों को मैंने 23 घंटे और 50 मिनट दिया वो लोग मुझे शमशान तक छोड़कर गए, लेकिन जिनको 10 मिनट दिया वो मुझे धाम में लेने जा रहे हैं। तो कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी कि हम जीवन में भगवान को 10 मिनट दे रहे हैं, और 23 घंटे 50 मिनट जिनको देने वाले वो लोग क्या करने वाले हैं? सबके साथ ये होना है, ऐसा मत सोचिए मेरे साथ नहीं होगा, सबके साथ उसको शमशान में जाकर जला। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जीवन में अभ्यास करे भक्ति का, भक्तों के संग में रहकर भक्ति का अभ्यास करने से जीवन के अंत में भी हमें भगवान की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए इस नाम को सतत लेना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और फिर ऐसा कहकर सती देवी ने अग्नि प्रकट की अपनी योग शक्ति से। उनके पास भी योग शक्ति है, शिव जी की वो पत्नी है, तो योग शक्ति से उन्होंने अग्नि प्रकट की और अपने देह को समाप्त कर दिया, उसमें वो जल गई। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि फिर उनका अगला जन्म मेनका की पुत्री के रूप में हुआ, जिनका नाम था पार्वती, फिर से वो शिव जी की पत्नी बनी। तो सती ने अपने देह को जला दिया और देह को जलाते हुए भी एक शिक्षा हम सबको प्रदान कर गई कि हमें एक ऐसी, हमें भी अपने देह को जला देना चाहिए। तो आप सोचेंगे हम कैसे जला दें, हमें तो योग अग्नि नहीं है। तो हमें अपने उस देह को जो हमारी मानसिकता को बनाता है उसको जला देना चाहिए। ऐसे हर देह को जो आसक्ति बढ़ाता है, ऐसे हर देह को जो इस भौतिक जगत को हमें आनंदमय बताता है, ऐसे हर देह को जो हमें कृष्ण से दूर ले जाता है, जला देना चाहिए। सती देवी ने उसको जला दिया और वर्णन है शास्त्र भागवत में कि सती देवी ध्यान कर रही थी शिव जी का, जिस समय उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया वो शिव जी का ध्यान कर रही थी और वो प्रसन्न थी। आप सोचिए कोई स्त्री अग्नि में प्रवेश कर रही हो कैसे प्रसन्न हो सकती है, कितना कष्ट हो रहा होगा, शरीर जल रहा है तो लग रहा होगा, लेकिन वो प्रसन्न है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि वो क्यों प्रसन्न थी, क्योंकि शिव जी का स्मरण कर रही थी। इसी तरह अगर हम सब सतत भगवान का स्मरण करें तो जो भी इस जगत के कष्ट हैं उनमें, उनके रहते हुए भी हम प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि हमारा स्मरण श्री कृष्ण का होगा। तो ऐसे सती देवी ने अपने देह को त्याग दिया, हम सबको ये सिखलाया कि ऐसी मानसिकता को हमें त्याग देना चाहिए जो हमें भगवान से दूर ले जाए। तो अब जब भी सती देवी जल गई तो बाकी जो लोग उनके साथ आए थे शिव जी के गण, उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या हुआ, तो वो आक्रमण करने लगे। लेकिन जैसे ही आक्रमण करने लगे, भृगु मुनि ने मंत्रों का उच्चारण किया, अग्नि में आहुति दी और उसमें से बहुत सारे सैनिक प्रकट हो गए और शिव जी के गणों को मार भगाया। तो सारे शिव जी के गणों को भागना पड़ा और ये बात जाकर नारद मुनि ने शिव जी को बताया। नारद मुनि गए और शिव जी से कहा कि ऐसे ऐसे सती ने अपने देह को त्याग दिया, वो अग्नि में जल गई और तुम्हारे जो गण हैं उनको भगा दिया गया। तो देखिए, पहली बार जब शिव जी का अपमान हुआ था, याद रखिए शिव जी ने क्या किया था, किसी को याद है, जब शिव जी का अपमान किया दक्ष ने पहली बार, शिव जी चुपचाप उठकर चले गए थे, कोई विरोध नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। कर सकते थे, चाहते तो वहीं दक्ष को मार सकते थे, अपनी शक्ति दिखाने के लिए शिव जी ने कोई प्रतिकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनका अपमान हुआ था, उन्होंने सहन किया। इतना ही नहीं, कभी जाकर सती को कहा भी नहीं उन्होंने उस यज्ञ के बाद कि तुम्हारे पिता ने मुझे अपमान कर दिया, मेरा अपमान किए। तो तब बताया जब दूसरे यज्ञ में जाने के लिए सती तैयार हुई, तब तक बताया भी नहीं। लेकिन अब जब सती का अपमान हो गया तब शिव जी ने सहन नहीं किया। ये बहुत सुंदर उदाहरण है हम सबके लिए। जब हमें क्रोध आए, शिव जी ने क्रोध किया, श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में लिखते हैं कि क्रोध को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्रोध को वश में करना है तो उस क्रोध को भगवान की सेवा में लगाना। हमारे जब मान सम्मान की बात हो चुपचाप सहन कर लेना, वहां से चले जाना चुपचाप। शिव जी वो झगड़ा कर रहे थे लोग, गण वो एक दूसरे पर आरोप कर रहे थे, शिव जी के जो गण थे वो श्राप दे रहे थे, भृगु मुनि इत्यादि श्राप दे रहे थे, शिव जी चुपचाप बिना किसी को बताए चले गए। तो जब अपने मान सम्मान की भावना हो, अपने मान के लिए व्यक्ति को चले जाना चाहिए, व्यक्ति को ये सोचना नहीं चाहिए कि नहीं मैं झगड़ा करूं, मैं देखता हूं कैसे इन्होंने ये कहा। लेकिन हाँ, जब भक्तों के मान सम्मान की भावना हो, बात हो, तो प्रभुपाद कहते हैं, उदाहरण देते हैं, जैसे अर्जुन ने किया क्रोध दिखलाया, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दिखलाया क्रोध, हनुमान जी ने दिखलाया, हनुमान जी ने लंका को जला दिया क्रोध में। लंका को जलाने के लिए थोड़ा तो क्रोध करना पड़ा होगा ना हनुमान जी को, प्रेम से थोड़ी जलाई थी लंका उन्होंने। या अर्जुन भी जब युद्ध कर रहे थे तो क्रोध में करेंगे, कोई प्रेम से युद्ध कर सकता है? उसको बोले आइए आइए बैठिए, चलो थोड़ा सा इधर बैठिए, तीर एकदम सीधा लगेगा आपको, ऐसे तो कोई हो नहीं सकता। क्रोध में बोलते थे, आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिवस है, मेरे तीर तुम्हारा खून पिएंगे, और वो भी बोलता तो क्रोध होता। तो प्रभुपाद कहते ये क्रोध भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो शिव जी यहां बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, अपने लिए उन्होंने कोई क्रोध नहीं किया, लेकिन सती का जब अपमान हुआ तो ऐसा वर्णन है भागवत में कि उठकर खड़े हो गए, जैसे ही नारद मुनि से उन्होंने सुना जोर जोर से हंसने लगे, मानो पागल हो गए हैं, और क्रोध में आकर उन्होंने अपने बाल को निकाला और ऐसे पटक दिया जमीन पर, और उससे प्रकट हुआ वीरभद्र, एक बड़ा भयानक राक्षस। और उसने पूछा शिव जी से, उस राक्षस का वर्णन है, उसका आकार आकाश को छू रहा था, तो उसने शिव जी से पूछा कि आप मेरे लिए क्या आज्ञा? और शिव जी ने कहा कि जाओ दक्ष का वध करो। और उस समय वीरभद्र चले और उनके साथ सारे शिव जी के गण पीछे पीछे चले। और यहां यज्ञ शुरू था, क्योंकि देखिए दक्ष इतना अहंकारी हो गया कि अपनी ही पुत्री ने देह त्याग दिया, उसने यज्ञ बंद नहीं किया। कौन ऐसा पिता हो सकता, ये तो अंधापन है। अर्थात यज्ञ पूरा करने का, मान सम्मान प्राप्त करने का, भोग करने का अंधापन कौन ऐसा व्यक्ति कर सकता है। पुत्री ने आत्महत्या कर ली, और वो भी सबसे छोटी पुत्री थी उनकी, 16 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री ने आत्महत्या कर ली उनकी आंखों के सामने, और वो यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ शुरू था और उस समय अचानक धूल उड़ने लगी, काला काला सब तरफ अंधकार छाने लगा। तो सब लोग ब्राह्मण इत्यादि कहने लगे ये क्या है, अभी तो प्रलय का समय नहीं आया, ये अचानक कैसे यहां पर हो गया धूल इत्यादि। और उस समय प्रसूति जो दक्ष की पत्नी है, उन्होंने कहा कि मेरे पति दक्ष ने शिव जी का अपमान किया है और ये निश्चित उसी का फल है, क्योंकि शिवजी वर्णन करती हैं कि शिवजी एक महान भक्त हैं और उन्होंने उनका अपमान कर दिया। तो फिर वीरभद्र वहां पहुंचे और बहुत गुस्से में थे और कोई उनको रोक नहीं पाया। और फिर शिवजी के गण अल मणिमान थे, नंदी थे, ये सब थे, और उस समय उन्होंने सब विध्वंस करना शुरू कर दिया। सारे जो यज्ञशाला थी उसको घेर लिया, यज्ञ बंद करा दिया, सबको मारने लगे। अलग अलग वर्णन है कैसे मारा, किसी के दांत तोड़े, भृगु मुनि की मूछें निकाल दी, ऐसा वर्णन है वहां पर, ऐसा खींच के निकाल दी मूछें उनकी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की आंखें बाहर निकाल दी। बड़ा भयानक वर्णन है भागवत में कि कैसे मारा, बहुत गुस्से में थे। और फिर दक्ष को पकड़ा वीरभद्र ने, अब दक्ष को मारना था तो उन्होंने हथियार लिए, काटने लगे, लेकिन आश्चर्य है कि उसका जो चमड़ा था वो कट ही नहीं रहा था। वीरभद्र पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो कट ही नहीं रहे। फिर उन्होंने मंत्र बोले, वो नहीं कट रहा। तो वीरभद्र आश्चर्य बोल रहे, मैंने मारने के लिए आया हूं, ये क्या हो रहा है, तो मार रहा हूं, ये मर ही नहीं रहे, क्योंकि वो दक्ष प्रजापति है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और फिर उस समय वीरभद्र ने देखा कि यज्ञ में जो बलि दी जाती है, वो बलि देने का जो स्थान है या बलि देने का जो चीज थी वो रखी थी वहां, तो उसने उसको उठाया इनको बलि के रूप में, क्योंकि यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में बलि देने इनकी ही बलि दी, और उस समय वो कट गया, तो उनका सर काट दिया और उठा के दूर फेंक दिया उन्होंने, और उसको भी जला दिया अग्नि में। ऐसे क्रोध में थे और सारा विध्वंस कर दिया। वहां पर ब्राह्मण भागने लगे, देवता इत्यादि थे, सब वहां से भागे, कोई बच नहीं पाया। इतना विध्वंस किया वहां पर उन लोगों ने, और फिर सारा सब समाप्त करके वो जला दिया उन्होंने सब आसपास पूरा यज्ञशाला को, और वापस चले गए। और अब दक्ष की मृत्यु हो गई, दक्ष का सर कट गया, और बाकी बहुत सारे लोगों का, किसी के दांत टूट गए, किसी की आंखें बाहर निकल गई, किसी की मूछें निकाल ली गई, ये सब भागवत में वर्णन। तो सारे जो बचे कुचे लोग थे, देवता और ऋषि इत्यादि, वो सब ब्रह्मा जी के पास गए। भागवत में वर्णन है कि इस यज्ञ में सब लोग आए थे जिनको बुलाया गया, दो लोग नहीं आए थे, एक ब्रह्मा जी और एक स्वयं नारायण विष्णु। इन्हें पता था कि क्या होने वाला है, तो इसलिए लोग दूर बैठे थे, होने दो जो होना है, बाद में जाएंगे। तो फिर ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रार्थना की, सारा वृत्तांत बताया कि क्या हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग यज्ञ के द्वारा आनंद या प्रसन्नता का प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन अगर आप भगवान के भक्तों का अपमान करते हो तो कोई यज्ञ आपको प्रसन्नता नहीं दे सकता। आपने अपमान किया शिव जी का, और इसीलिए कोई यज्ञ आपको फल नहीं दे सकता। ये ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, जो पहले ब्राह्मण हैं इस ब्रह्मांड के। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि अगर हम यज्ञ करते हैं या कोई अन्य क्रिया करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं है अगर हम भक्तों के प्रति अपराध या भक्तों का अपमान करते हैं। इसीलिए भागवत में कहा गया है, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो हि सः। अगर हमारे कर्म, नेह यत् कर्म धर्माय, अगर हमारे कर्म हमें धर्म की ओर नहीं ले जा रहे, और ऐसा धर्म जो वैराग्य की ओर नहीं ले जा रहा, और ऐसा वैराग्य जो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा की ओर नहीं ले जा रहा, जीवन अपि मृतो हि सः, व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति के समान, जीते हुए भी। अर्थात जो हम कर्म करें वो धर्म के अनुसार होने चाहिए, और हमारा धर्म हमारे हृदय में आसक्ति नहीं, वैराग्य को बढ़ाना चाहिए। और वैराग्य केवल परिपूर्ण नहीं है अपने आप में, हिमालय पे चले जाना, घर छोड़ देना, संन्यास लेना, ये कोई वैराग्य का लक्षण नहीं है। सच्चा वैराग्य अपने अहंकार को त्यागना है, सच्चा वैराग्य अपनी इच्छाओं को त्यागना है, सच्चा वैराग्य भोग प्रवृत्ति को त्यागना है। इसलिए केवल घर छोड़ देना, समाज छोड़ देना, हिमालय में चले जाना, कोई वैराग्य नहीं है। सच्चा वैराग्य कृष्ण से आसक्ति के मार्ग को कहते हैं। वैराग्य की पूर्णता होती है आसक्ति में, अनासक्ति की पूर्णता होती है आसक्ति में, कृष्ण से आसक्ति। धर्म स्वनुष्ठित पुंस विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पादय यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। भागवत कहता है आप धर्म करते हैं, अपने अपने नियत कर्म करते हैं, धर्म स्वनुष्ठित पुंस, लेकिन अगर विश्वक्सेन कथा सुय, भगवान की कथा में न उत्पादय यदि रतिम, आपकी रति उत्पन्न नहीं हुई, आपका प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, बारंबार ये कथा सुनने की भावना नहीं बढ़ी, ऐसा नहीं लगा कि बार बार सुनते रहें सुनते रहें, हमारे कान कभी तृप्त ना हो, वयंतु न वितृप्याम, कभी भी हमारे जो कान है संतुष्ट ना हो, उत्तम श्लोक विक्रमे, भगवान की कथा सुनते हुए और बारंबार हर पद पे स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पर हमें अगर आनंद नहीं आ रहा इस कथा में, श्रम एव हि केवलम, सारे कार्य व्यर्थ है। इसीलिए जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति, भगवान के नामों का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो सारे देवता शिव जी के पास जाना चाहते थे लेकिन घबरा रहे थे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि कोई चीज आनंद नहीं देगी, तो इसलिए एक ही उपाय है। ब्रह्मा जी दोनों चीजें बताते, एक तो आपने अपराध किया, अब अपराध का उपाय क्या है? वैष्णवों के प्रति अपराध का एक ही उपाय है, उनसे जाकर क्षमा मांगना। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि आइए हम सब चलते हैं शिव जी के पास, वो वैष्णव है, वो क्षमा कर देंगे, लेकिन हमें उनकी शरण जाना चाहिए इस समय। तो फिर सारे लोग कैलाश में गए। भागवत में कैलाश का बहुत सुंदर वर्णन दिया गया है, कई श्लोकों में उसका वर्णन किया गया कि कैसा था वो स्थान, और फिर वो स्थान जहां शिव जी बैठे हैं, हमने वर्णन किया कि बहुत विशाल वट वृक्ष है, 800 मील ऊंचा, 600 मील चौड़ा, और इस वट वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे हुए नारद मुनि इत्यादि को प्रवचन कर रहे थे जब देवताओं ने देखा। और उस समय सारे देवता गए, ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी ने बड़ी नम्रता से प्रार्थना की शिव जी से और कहा कि आप नाराज मत होइए। दरअसल भागवत में आचार्य लिखते हैं कि ब्रह्मा जी भी घबरा रहे थे कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि शिव जी फिर से गुस्से में हो जाएं और फिर मेरे चार में से दो तीन सर गायब हो जाएं। तो इसीलिए उन्होंने बड़े प्रेम से उनका गुणगान करते हुए, डरते हुए, जबकि जैसे ही ब्रह्मा जी आए, शिव जी ने उठकर उनको प्रणाम किया, उनके चरण छुए। देखिए, शिव जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं, लेकिन इस जगत में आते वो ब्रह्मा जी से हैं, तो उनके पिता के समान हुए, तो एक नीति का, एक आचरण का, सदाचार का पालन करते हुए उन्होंने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके चरण छुए। और फिर ब्रह्मा जी बड़े डरते हुए उनको कहने लगे कि आप तो बहुत श्रेष्ठ हैं, आप ज्यादा क्रोध मत कीजिए, और ये सब जो हुआ है, दक्ष को भी आप पुनर्जीवित कर दीजिए। तो उस समय शिव जी ने कहा, बहुत सुंदर बात कही शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं ये जो ये सब हुआ है, इन लोगों को मैंने दंड इसलिए नहीं दिया कि मैं इनसे कुछ क्रोधित हूं, मुझे कोई क्रोध नहीं है इन लोगों के ऊपर, लेकिन ये करना आवश्यक था ताकि इनको सही मार्ग क्या है वो पता चले। तो प्रभु का तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे एक पिता बच्चे को डांटते हैं, द्वेष से नहीं, क्रोध से नहीं, प्रेम से, उसको सिखलाने के लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए, इसी तरह शिव जी ने ये जो कार्य किया, ये कोई द्वेष से नहीं किया। हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा उनकी पत्नी का वध हो गया या उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली तो इतना क्रोध आ गया कि सब जगह उन्होंने विध्वंस कर दिया, नहीं। इसीलिए बहुत स्पष्ट शिव जी ने कहा, मुझे इन लोगों से कोई द्वेष नहीं है, कोई क्रोध नहीं है इनके ऊपर, लेकिन मैं इनको सिखलाना चाहता था। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे एक पिता बच्चे को सिखलाना चाहता है, उसी तरह शिव जी ने इन लोगों को ऊपर दंड दिया। और फिर शिव जी ने कहा कि ठीक है, दक्ष को एक बकरी का सर मिलेगा, और अलग अलग वर्णन किए कि जैसे जिनके दांत चले गए थे बोले वो अपने शिष्यों के द्वारा खा लेंगे, ऐसे बहुत सारा वर्णन कर दिया। शिव जी ने सबको आशीर्वाद दिया और फिर सब मिलकर उस यज्ञ में पुनः गए। वहां पर यज्ञ पुनः प्रारंभ हुआ, दक्ष का सर लगाया गया, दक्ष को एक बकरे का सर लगा, और फिर वो यज्ञ पूर्ण हुआ। तो इस प्रकार दक्ष की कथा भागवत में आती है। और मैत्रेय मुनि, आप याद रखिए, कथा मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं, किसी को याद है? हाँ, विदुर, बहुत अच्छा। बलराम जी सब याद रखते हैं, बलभद्र, बलराम जी आदि गुरु हैं, इसलिए गुरु से कुछ पूछना नहीं चाहिए। तो विदुर, मैत्रेय मुनि ये विदुर को कथा सुना रहे हैं। तो मैत्रेय मुनि सारी कथा सुनाने के बाद उसके श्रुति का फल देते हैं। हर कथा के बाद जो आचार्य होते हैं वो बताते हैं कि कथा सुनने से क्या होता है। तो वो कहते हैं कि जो भी ये कथा सुनता है और फिर जाकर दूसरों को सुनाता है, उसका जितना भी दूषण है इस भौतिक जगत का, वो सारा दूर हो जाता है। इसलिए आप सब जाकर दूसरों को सुनाइएगा ये कथा दक्ष की, ताकि आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितना भी दूषण है, वो दूर हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, मन में कोई जिज्ञासा है? हाँ, माइक। अच्छा, बोल, ऐसे ही बोल। दो प्रश्न हैं इनके, आप सबने सुने नहीं होंगे इसलिए दोहरा रहे हैं। पहला कि ब्रह्मचारी और सन्यासी में क्या अंतर है और दोनों में कौन श्रेष्ठ हैं, और दूसरा प्रश्न है कि जब घरों में ऐसे कहा जाता है कि जब मृत्यु हो जाए तो कुछ दिनों तक भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये सही है या गलत है। पहला प्रश्न, ब्रह्मचारी और सन्यासी में क्या अंतर होता है? वैराग्य की दृष्टि से ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम की दृष्टि से सन्यासी को श्रेष्ठ माना जाता है। ये ब्रह्मचारी की अगली अवस्था है। ब्रह्मचारी का जीवन एक स्थान पर रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करना होता है, और सन्यासी जब वही ब्रह्मचारी परिपक्व हो जाता है, दक्ष हो जाता है, तब फिर उसको प्रचार के लिए जाना होता है। तो सन्यासी को एक जगह नहीं रहना है। सन्यासी के लिए नियम यह है कि उसको घूमना चाहिए प्रचार के लिए, ब्रह्मचारी के लिए है कि एक स्थान पर रहना चाहिए। एक ये अंतर है। दूसरा अंतर है कि वर्णाश्रम पद्धति में 5 वर्ष की उम्र में व्यक्ति ब्रह्मचारी जीवन स्वीकार करता था, मतलब गुरुकुल जाता था, और 25 वर्ष तक रहता था। 25 वर्ष की उम्र में वो बालक ये निश्चित करता था कि उसे अब आगे क्या करना है, या तो वो गृहस्थ जीवन स्वीकार करता था, नहीं तो सन्यास के लिए आगे तैयारी करता था। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी में एक अंतर ये भी है कि ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन आगे चलकर स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सन्यासी के लिए ये अनुमति नहीं है। सन्यासी मतलब पूर्ण रूप से विरक्त, उसको फिर अनुमति नहीं होती है कि वो फिर से आकर विवाह कर सके या। तो ये एक और अंतर सन्यासी और ब्रह्मचारी में होता है। सन्यासी चारों वर्ण और चारों आश्रमों के गुरु माने गए हैं, और ब्रह्मचारी उनके सेवक के रूप में रहने चाहिए। तो ब्रह्मचारी मूलतः ट्रेनी है, प्रशिक्षण ले रहा है। आपके यहाँ अप्रेंटिसशिप होती है ना, हाँ, तो तब तक वो ज्वाइन नहीं कर पाता, वो ऑफिसर नहीं बनता, तो वो ट्रेनी है। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो वो ऑफिसर सन्यासी हो जाता है, ऐसा। ठीक है। दूसरा प्रश्न था कि जब किसी की मृत्यु होती है तो कुछ समय तक भगवान की पूजा नहीं करने को कहा जाता है, इसका क्या कारण है, सही है या गलत है? सही है, शास्त्र अनुमोदित है। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग समय बताए गए हैं। जैसे अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके लिए 10 दिन बताया गया है, क्षत्रियों के लिए 13 दिन बताए गए हैं, शूद्रों के लिए 1 महीना बताया गया है। तो ऐसे अलग अलग समय है कि उनको ये क्या कहते हैं कि मौन नहीं, क्या बोलते हैं कि दुख जो होता है ना उनको, तो उस वो दुख का काल होता है उनके लिए, मातम मनाते हैं कहते हैं, तो ये दुख का काल है। तो भगवान की भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए? इसका एक कारण यह है कि भगवान के सामने कभी भी दुखी अवस्था में नहीं आना चाहिए, दुखी अवस्था में भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो क्योंकि जब कोई व्यक्ति मरता है तो बहुत आसक्ति के कारण बहुत हृदय में दुख होता है, केवल उसका स्मरण होता है, तो ऐसी अवस्था में अगर हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए एक कारण ये है कि व्यक्ति के दुख के कारण या दुखी होने के कारण उसको भगवान के सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए मंदिरों में भी आना मना होता है। दूसरा, अशुद्धि। अशुद्धि अर्थात ऐसा बताया जाता है कि जब व्यक्ति अपने शरीर से बहुत आसक्त होता है तो मृत्यु के बाद भी आत्मा उस स्थान पर काफी समय तक घूमती रहती है, उस शरीर में वापस जाने के लिए या अपने प्रियजनों से आदान प्रदान करने के लिए, जो वो कर नहीं पाते। तो इसलिए उस शुद्धिकरण को क्रिया जाते, कुछ क्रियाएं की जाती हैं शुद्धिकरण की, जिससे उस आत्मा की आसक्ति समाप्त हो जाए और वो स्थान भी शुद्ध हो जाए। तो इसीलिए ऐसे समय में भगवान की पूजा नहीं की जाती है। तो ऐसे कई कारण हैं, पर विशेष कारण यही है कि हमें दुख बहुत होता है, तो दुखी अवस्था में भगवान के सामने नहीं आना चाहिए। तो आप लोग भी जब रविवार को भगवान के सामने आए तो दुखी अवस्था में नहीं आए, प्रसन्न अवस्था में आए। वैसे दुखी हो तो भी आ जाना चाहिए, मगर दूसरे दुख में, क्योंकि कौन ऐसा है जो सुखी है यहाँ पे। अगर ऐसे कहेंगे कि केवल सुखी व्यक्तियों के लिए अनुमति है मंदिर में आने की, तो कोई नहीं होगा, खाली होगा, भगवान एक ही सुखी व्यक्ति है, वही खड़े रहेंगे अकेले। लेकिन उस समय दुख बहुत ज्यादा होता है। और कोई प्रश्न किसी का, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। चार वर्णों में से किसी को मांसाहार की अनुमति है? क्षत्रियों को है। अगर कोई ब्राह्मण मांस खाता है तो ब्राह्मण कहलाता है या नहीं? आप लोग क्या कहते हैं इसका उत्तर? ब्राह्मण मांस खा सकता है या नहीं? आप लोग थोड़ा भ्रम है। हाँ, खा सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे संडे को वगैरह नहीं। हाँ, ब्राह्मण लोग ज्यादा खाते हैं। ये तो कलयुग है ना, आप कलयुग का प्रश्न कर रहे हो या कलयुग का है? तो उत्तर दूसरा देंगे। कलयुग है, अगर आप कलयुग के विषय में, तो फिर ब्राह्मणों को ही खाना चाहिए थे। नियम ये है कि ब्राह्मणों के लिए मांसाहार नहीं है, लेकिन कुछ विशेष श्रेणी के ब्राह्मणों को मांसाहार की अनुमति है। इसका वर्णन महाभारत में किया गया है। महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे, उनको वनवास जाना था, तो ऐसा वर्णन है कि उनके साथ बहुत सारे ब्राह्मण चले, और उनमें ऐसे भी ब्राह्मण थे जो मांसाहार करते थे। अर्थात कुछ विशेष ब्राह्मण होते हैं जिनको ये अनुमति दी जाती है, अन्यथा ब्राह्मणों को अनुमति नहीं है। विशेष करके भक्तों को अनुमति बिल्कुल नहीं है मांसाहार की। शास्त्रों में मांसाहार की अनुमति दी गई है, ऐसा नहीं है कि मांसाहार पूरा बंद किया गया। शास्त्रों में मांसाहार की अनुमति है, लेकिन तब जब बहुत आपातकालीन स्थिति हो, आपकी जीवन मृत्यु का सवाल हो, ऐसे समय में आप निचली श्रेणी के प्राणियों को मारकर खा सकते हैं, ये शास्त्र कहते हैं। मतलब आप जंगल में हैं, कई दिनों से भटक रहे हैं, अगर आपने आज कुछ खाया नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, उस अवस्था में ठीक है। लेकिन संडे है, संडे को खाना ही चाहिए, नहीं तो हमारे कुल की परंपरा नाश हो जाएगी, ये सही नहीं है। तो ये इमरजेंसी नहीं है। तो इसीलिए भक्तों को मांसाहार से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। तो वर्णाश्रमों में ब्राह्मणों को नहीं थी, क्षत्रियों को अनुमति थी। उसका कारण था कि क्षत्रियों को युद्ध करना होता था, शिकार करना होता था, लेकिन सारे क्षत्रिय भी नहीं खाया करते थे, क्योंकि ऋषियों में राज ऋषि हुआ करते थे, तो वे लोग भी कभी मांस को स्पर्श नहीं करते थे। लेकिन क्षत्रियों को ये थोड़ी बहुत अनुमति है आजकल। अब आप कहें कि फिर जो क्षत्रिय परिवार से उसको मांस खाना चाहिए, आजकल न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई ब्राह्मण है। कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में केवल शूद्र हैं सब, क्षत्रिय अपने नाम के लिए हैं केवल, और जब युद्ध होता है तो घर में छुप जाते हैं, बट ये क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय मतलब जिसको युद्ध के लिए सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। तो केवल शराब पीने और मांस खाने के लिए हम क्षत्रिय हैं, लोगों की रक्षा करने के लिए क्षत्रिय नहीं है। तो इसलिए इस समय में वर्णाश्रम पद्धति अभी ठीक से है नहीं स्थापित। इसीलिए जो आचार्यों ने इस समय के लिए नियम दिए, उनका पालन हमें कर लेना चाहिए, उसी से प्रगति होगी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? थोड़ा जोर से, कृतज्ञता या कृतज्ञता? कृतज्ञ होना चाहिए और शरणागत हो, इनमें क्या अंतर है? कृतज्ञता और शरणागति में क्या अंतर है? इस कृतज्ञ होना चाहिए हमें भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, जिसने भी जो भी किया हमारे लिए। तो कृतज्ञता और शरणागति में एक ही अंतर है कि कृतज्ञता की चरम सीमा है शरणागति। कृतज्ञता प्रारंभ की अवस्था है, शरणागति उसकी अंतिम अवस्था है। जब हम कृतज्ञ होना प्रारंभ करते हैं, हम सोचते हैं हाँ भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए, ये कृतज्ञता है। जैसे हम सोचे कि भगवान ने हमें आकाश में से लाइट दिया, पानी दिया, अन्न दिया, ये सब तो भगवान दे रहे हैं, कोई फैक्ट्री में नहीं बना सकते, तो ठीक है मेरा कर्तव्य है कम से कम भगवान के मंदिर जाऊं, थोड़ी बहुत कथा सुनूं, इसको कृतज्ञता कहते हैं। जब ये कृतज्ञता बहुत बढ़ जाती है, जहां हम सोचने लगते कि नहीं केवल इतना ही नहीं, मेरा शरीर भी भगवान ने दिया है, मेरा अस्तित्व भगवान के लिए है, मेरा कर्तव्य केवल भगवान की सेवा है, ये शरणागति है। तो कृतज्ञता और शरणागति में केवल यही अंतर है, कृतज्ञता पहली सीढ़ी है, शरणागति उसका लक्ष्य है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इसी प्रकार आइए अगले रविवार को एक भागवत से बहुत रोचक और नए प्रसंग को प्रारंभ करेंगे, तो आप सब उसको सुनने के लिए समय पर आइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ सूचनाएं हैं? सूचना
हरे कृष्णा